पल्लवी, जल्दी करो, और कितना टाइम लगाओगी तुम? मैं और दक्षु कब के तैयार हो गए, और तुम घंटे भर से बस पाँच मिनट कहकर अपने मेकअप की दुकान खोले बैठी हो। पता नहीं तुम्हारे पाँच मिनट हैं या दक्षु की शरारत खत्म होने में ही नहीं आ रही। अगर यही हाल रहा तो सब पहुंच जाएंगे वहां, और हम तुम्हारा इंतजार ही करते रह जाएंगे। दृशांत ने कमरे में कदम रखते हुए नाराजगी भरे स्वर में कहा। निगाहें पल्लवी पर ठहरी, जो अपने झुमकों के कलेक्शन में उलझी हुई थी कि कौन सा पहने और कौन सा नहीं। दृशांत, जो पिछले एक घंटे से उसका इंतजार कर रहा था, वो फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहा था, जबकि पल्लवी उसकी बात सुनकर चिढ़ उठी। तो क्या चाहते हैं, मैं भी आपकी और दक्षु की तरह पैंट शर्ट पहनकर चल दूं? इतना कॉमन सेंस नहीं आप में कि मैं लड़की हूं और आप दोनों लड़के? तैयार होने में आपको करना ही क्या होता है? शर्ट पैंट डाली, बालों में हाथ घुमाया, थोड़ा सेंट वेंट छिड़का और हो गए तैयार। लड़की होती तब तो पता चलता आपको कि तैयार होना कितना मुसीबत का काम है, क्या क्या करना पड़ता है और कैसे दिमाग खराब होता है। मतलब तुम लड़की हो और हम लड़के, इसमें भी हमारी ही गलती है जो तुम हमें सुना रही हो? दृशांत ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए हैरानी से सवाल किया, जिसे सुनकर पल्लवी और ज्यादा चिढ़ उठी और गुस्से में जबड़े भींच लिए। देखिए शुक्ला जी, मेरा दिमाग अभी पहले से ही बहुत खराब है। एक तो यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन से झुमके पहनूं, उस पर आप और मेरा सर खाकर खून जलाने चले आए। प्यार से कह रही हूँ मैं आपको, अगर अपनी खैरियत चाहते हैं तो चुपचाप यहाँ से निकल जाइए और मुझे आराम से मेरा काम करने दीजिए, वरना अगर मेरा सर घूमा तो जाऊंगी ही नहीं, फिर चले जाइएगा दोनों बाद बेटे अकेले। दृशांत ने गुस्से से तमतमाते चेहरे को देखकर, दृशांत ने आने वाले खतरे को भांपते हुए तुरंत ही तेवर बदले और चेहरे पर कोमल भाव लाते हुए बोला, अच्छा इतना हाइपर क्यों हो रही हो? इतना गुस्सा करोगी तो अभी से रिंकल्स आ जाएंगे और मुझसे पहले तुम बूढ़ी दिखने लगोगी। लो जी, अनजाने में शुक्ला जी ने आग को शांत करने की कोशिश में उसमें पेट्रोल डाल दिया था और अगले ही पल आग ज्वालामुखी सी भड़क उठी। अच्छी बात है, जल्दी बूढ़ी हो जाऊंगी तो मुझे छोड़कर अपने लिए कोई जवान और हसीन बीवी ढूंढ कर ले आइएगा। पल्लवी की आंखों से निकलती गुस्से की लपटें दृशांत को जलाकर भस्म करने को तैयार थीं, और उसका ये रिएक्शन देखकर दृशांत को भी शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने गहरी सांस छोड़ी और प्यार भरी निगाहों से उसे देखते हुए कोमल स्वर में बोला, ऐसे कैसे दूसरी बीवी ढूंढ लूंगा जब मोहब्बत मुझे अपनी इस नकचरी बीवी से है, जो हसीन भी है और जवान भी, और अगर ना भी रही तब भी मेरी मोहब्बत तो यही रहेगी, और अपनी सारी जिंदगी में अपनी इसी प्यारी सी गुस्सैल बीवी के साथ ऐसे ही लड़के झगड़ते उसकी मोहब्बत को महसूस करते हुए बिताना चाहता हूँ। दृशांत धीरे धीरे पल्लवी की ओर बढ़ने लगा था और कदम उसके सामने आकर ठहरे थे। उसके अल्फाजों में मोहब्बत की मिठास खुली थी। पल्लवी का गुस्सा उसकी मोहब्बत के एहसासों को महसूस करते हुए पल भर में गायब हो गया था, पर अब की बार उसने नाराजगी से अपने गालों को फुला दिया। आपकी इन मीठी मीठी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। झूठ, असर तो हो रहा है, देखो तुम्हारा गुस्सा कैसे पल भर में गायब हो गया। दृशांत दिलकशी से मुस्कुराया, वहीं पल्लवी ने मुंह ऐंठ लिया। बहुत बुरे हैं आप, पहले मुझे गुस्सा दिलाते हैं फिर ठीक से नाराज भी नहीं होने देते। पल्लवी की शिकायत सुनकर दृशांत खुद पर ही इतराया और प्यार से उसके गाल पर झूलती लटों को अपनी उंगलियों में उलझाते हुए उसके कान के पीछे खोंस दिया। अब ये तो मेरा टैलेंट है, और इससे साफ जाहिर होता है कि मैं अपनी जिंदगी और खुशियों को खुद से रूठने नहीं दे सकता, इसलिए उसे मनाने के तरीके ढूंढ लेता हूँ। पर आपकी जिंदगी अभी भी आपसे नाराज है और बहुत परेशान भी। पल्लवी ने गालों को फुलाते हुए शिकायती निगाहों से उसे देखा और उसकी इस अदा पर दृशांत दिलकशी से मुस्कुरा उठा। अच्छा तो बताओ कि मेरी जिंदगी आज इतनी परेशान क्यों है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा झुमका पहनूं। पल्लवी ने बच्चों जैसे मुंह बनाते हुए अपनी परेशानी उसके सामने रख दी। चलो अभी तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। दृशांत उसके झुमकों के खजाने को खंगालने लगा। कुछ देर की मेहनत के बाद उसने एक झुमका निकाला और पल्लवी को पहनाने लगा। बहुत प्यारी लग रही हो। दृशांत प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए मुस्कुराया। अपनी तारीफ सुनकर पल्लवी भी मुस्कुरा दी। माँ पापा तैयार हो गए और मामा मामी चल रहे हैं ना साथ? सब चल रहे हैं और तैयार भी हो गए, बस तुम जल्दी से रेडी होकर बाहर आओ तो हम सब निकले। अनु दो बार फोन कर चुकी है, बस दो मिनट में आई, पल्लवी ने जवाब दिया और झट से अपने बाल ठीक करने लगी। सहगल निवास, अन्वय अंतरा का कमरा। अन्वय जल्दी करो यार, दीदी जीजू आने ही वाले होंगे। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े अन्वय ने व्यग्रता से अंतरा को आवाज लगाई। उसने जीन्स पहनी हुई थी और बालों को सेट करने में लगा था। बस बस हो गया, एक सेकेंड, अंतरा ने धागे को दांत से काटते हुए जवाब दिया और झट से शर्ट उसकी ओर बढ़ा दी, जिसे अन्वय ने जल्दी से पकड़ अपनी पहन ली और बटन लगाते हुए अंतरा की ओर घूम गया। वैसे तुम आज भी बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। शादी को जितना वक्त बीतता जा रहा है तुम उतनी ही ज्यादा अनरोमांटिक होती जा रही हो। इतना अच्छा माहौल बना था, मौका भी था और दस्तूर भी। कितना रोमांटिक सीन होता जब तुम करीब आकर मेरी शर्ट में बटन लगाती और मैं तुम्हारे साथ थोड़ा रोमांस कर लेता। पर नहीं, तुम्हें तो मुझसे शर्ट उतरवाकर ही बटन लगाना था। रूठे बच्चे जैसे अन्वय अंतरा की शिकायत लगाते हुए अजीब अजीब मुंह बना रहा था। वहीं उसकी नौटंकी देखकर अंतरा चिढ़ गई। तुम्हें रोमांस के अलावा कुछ सूझता है? जब देखो बस मुझे सताने के बहाने ही ढूंढते रहते हो। आयान इतना बड़ा और समझदार हो गया है, पर मजाल हो जो तुम्हारी हरकतें जरा भी सुधरी हो। बिल्कुल सुधर जाऊंगा, बस मुझे एक प्यारी सी बेटी ला दो।
अन्वय ने उसकी कमर पर बांह लपेटते हुए उसे अपने करीब खींच लिया और बड़ी ही मोहब्बत से अपनी ख्वाहिश बयां की। अंतरा ने खींचते हुए उसे घूरा और अपनी कमर पर लिपटी उसकी बाहों को हटाने लगी। हाँ बेटी तो पेड़ पर लगी है ना, अभी तोड़कर लाकर तुम्हारी गोद में रख देती हूँ। बड़े आए बेटी वाले, हटो छोड़ो मुझे, वरना वो हाल करूंगी कि बेटा भी अपने बाप को पहचानने में धोखा खा जाएगा। अन्वय पर अंतरा की धमकी का रत्ती भर असर नहीं हुआ। ढेर जैसे वो बत्ती सी चमकाता रहा और उसकी कमर पर अपनी बाहों की पकड़ कसते हुए उसे खुद से सटा लिया। तुम जब ऐसे चिढ़ती हो ना, कसम से जहर लगती हो। तुम्हारे इन तीखे तेवरों का कायल हूं मैं। तुम्हारी छुरी सी तेज जबान सीधे दिल में उतरती है। सालों बीत गए और हर बीतते वक्त के साथ तुम्हारा असर मुझ पर बढ़ता ही जा रहा है। आज भी जब तुम्हारी इन बड़ी बड़ी तीखी निगाहों से निगाहें टकराती हैं तो दिल उसमें डूबने को मचल उठता है। शरारत मोहब्बत में बदली थी, आंखों से सच्चे जज्बात झलकने लगे थे, उंगलियां अंतरा के चेहरे को चूमने लगी थी। उन प्यार भरे शब्दों का गहरा असर अंतरा पर हुआ था और अब वो काफी हद तक शांत हो चुकी थी, पर अन्वय की आंखों में छलकते जज्बात को महसूस करते हुए उससे छूटने को मचल उठी थी। अन्वय तंग नहीं करो, अभी तक तो जल्दी के घोड़े पर सवार मेरी जान खा रहे थे और अब इन हरकतों में वक्त बर्बाद करते हुए कोई एहसास ही नहीं। अंतरा का जवाब सुनकर मोहब्बत की खुमारी अन्वय के सर से यूं गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। उसने खींचते हुए अंतरा को घूरा और बुरा सा मुंह बना लिया। इसे वक्त बर्बाद करना नहीं, बीवी के साथ रोमांस करना कहा जाता है।